नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नामांकन दाखिल किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा और सदन की गरिमा बनाए रखना सभी विधानसभा अध्यक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी है। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर मौसम के मिजाज में बदलाव। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विचारों, विचारधारा और आदर्शों को त्याग दिया है और देश के विकास या गरीबों के कल्याण से उसका कोई वास्ता नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये अधिनियम पूरे देश में लागू होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत इसके दायरे में आएगी। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित किया गया है।
100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत दी गई है। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा, कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7 अंक बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में IMF ने कहा कि ये वृद्धि इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में मजबूत गति को दर्शाती है। IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% का अनुमान व्यक्त किया है। देश में MSME क्षेत्र के 3 लाख से ज्यादा उद्यमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 52,300 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये ऋण आवेदन इस वित्त वर्ष में दिसंबर तक स्वीकृत किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने MSME के लिए डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल शुरू किया है। इस प्रणाली से स्वचालित प्रक्रिया के तहत ऋण मूल्यांकन में तेजी आई है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति सफाई कर्मचारियों और दिव्यांग जन सहित 1,381 लाभार्थियों को रियायती ब्याज पर ऋण दिया गया है। योजना के तहत इस महीने जिला स्तरीय समितियों द्वारा साक्षात्कारों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद ऋण सीधे लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 50,000 रुपए तक का अनुदान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश के छोटे शहरों में उभरती स्टार्टअप संस्कृति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आ रही है। जो युवा पहले काम के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते थे, वे अब जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जैसे शहरों में अपने स्वयं के उद्यम शुरू कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये युवा न केवल स्वयं को स्थापित कर रहे हैं बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। राज्य सरकार की प्रोत्साहन नीतियों के कारण ये शहर अब नए व्यवसायों के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहे हैं। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि युवाओं में नवाचार और स्वरोजगार के प्रति बढ़ते रुझान से आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिल रही है।
जोधपुर में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है। यहाँ 600 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है और इन्हें अब तक 1 करोड़ से ज्यादा ग्रांट मिल चुकी है। 25 से अधिक युवा उद्यमियों को औसतन 5 लाख से 12 लाख रुपए तक सहायता मिली है। ये स्टार्टअप आईटी, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, हैंडीक्राफ्ट, ई कॉमर्स और एग्री टेक जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। पूरे राजस्थान में इस समय करीब 7400 स्टार्टअप पंजीकृत है, जिनमें से 2000 पिछले 2 वर्षों से जुड़े हैं। राज्य सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए 2.40 लाख रुपए की आइडेंटेंशन ग्रांट, महिला उद्यमियों को 3 लाख रुपए, सफल स्टार्टअप को 60 लाख रुपए तक अनुदान, 2 करोड़ रुपए तक लोन और भविष्य में 5 करोड़ रुपए तक इक्विटी फंडिंग का प्रावधान किया गया है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लखनऊ में आज से 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा और सदन की गरिमा बनाए रखना सभी विधानसभा अध्यक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बिरला ने कहा कि वर्ष 2015 में हुए सम्मेलन के बाद से देश के लगभग सभी विधानमंडल आधुनिक और पेपरलेस हो चुके हैं और सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन प्रतिनिधियों द्वारा सदन में रखी गई बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए और उसका सकारात्मक परिणाम निकलना चाहिए। उन्होंने इस सम्मेलन को नई ऊर्जा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच बताया। जयपुर में भारतीय सेना के 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में आज एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महल रोड पर हुए इस समारोह में सप्त शक्ति कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने उत्कृष्ट योगदान देने वाले सैनिकों, अधिकारियों और नागरिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सेना और जनता के बीच बढ़ते समन्वय की सराहना की। समारोह में विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों को भी उनके सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस वर्ष सेना ने अपना स्थापना दिवस छावनी से बाहर निकलकर आम जनता के बीच मनाया है। इस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें आय और रोजगार सृजन में अनुकरणीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तक, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सरकारी पहलों के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग, किसान, पंचायत संस्थाओं के अध्यक्ष शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन अतिथियों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया है। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव आया है। राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर आज घने बादल छाए रहे, जिससे बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में 22 से 24 जनवरी के बीच एक नया और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होगा। इसके असर से जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी इलाके में मावठ की संभावना है। इस दौरान जयपुर और भरतपुर संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होगी, लेकिन 22 जनवरी के बाद पारे में फिर गिरावट आएगी। सवाई माधोपुर में आयोजित अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीक मेले में फलों के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। पंजाब के अबोहर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अमरूद से बने उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. रमेश कुमार ने बताया कि फलों को सीधे बेचने के बजाय उनसे नए खाद्य पदार्थ बनाकर लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इन उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण देकर खुद का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के विद्यार्थियों ने भी इस आयोजन को नई तकनीक सीखने और रोजगार के अवसर समझने के लिए उपयोगी बताया है। सवाई माधोपुर के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने बताया कि अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीक मेले से उन्हें काफी कुछ नया सीखने को मिला है। बालोतरा जिले में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए नए स्टेडियम के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। राज्य सरकार की बजट घोषणा और नगर विकास न्यास के गठन के बाद इस दिशा में कदम उठाया गया है। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने बताया कि इस स्टेडियम के बनने से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता को निखारने का मौका मिलेगा।
बजट में जिला स्तरीय स्टेडियम की कार्य की घोषणा हुई थी। इसके अलावा जिले स्तर का जो ज्योतिबा फुले स्टेडियम है उसमें यूआईटी से भी काम करवाए जा रहे हैं। उसमें टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्स क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बाकी और भी जो विभिन्न प्रकार के गेम्स का हम लोग यहाँ पर प्रोविजन कर रहे हैं।
क्षेत्रीय विधायक अरुण चौधरी ने कहा कि नया खेल परिसर बनने से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की खेलों में रुचि बढ़ेगी। इस परियोजना को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों और युवाओं में उत्साह है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर और रामदेवरा के बीच विशेष रेल सेवा शुरू की जा रही है। ये गाड़ी 20 से 28 जनवरी तक रोजाना चलेगी। जोधपुर से ये ट्रेन सुबह 9:30 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन रामदेवरा से दोपहर 2 बजे चलकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन मार्ग में राई का बाग, मंडोर, ओसियां और फलौदी सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पाली नगर निगम कार्यालय द्वारा घुमंतु समुदाय के परिवारों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में समुदाय के लोगों के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास जैसे आवश्यक दस्तावेज मौके पर ही बनाए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर विकसित भारत जी रामजी अधिनियम को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने नामांकन दाखिल किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा और सदन की गरिमा बनाए रखना सभी विधानसभा अध्यक्षों की सामूहिक जिम्मेदारी है। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर मौसम के मिजाज में बदलाव। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।